हम एक दफ़ा देखेंगे कि इस्लाम में जो लफ्ज़ जिहाद या किताल है वो उसकी असल नौईयत क्या है। हम इस आयत में देख रहे थे कि वयकून अद्दीन लिल्लाही, कि जब तक के दीन अल्लाह के लिए ना हो जाए। अगर आप इस लफ्ज़ को अपने सामने रखें ना, तो एक चंद जुमले से याद रखिएगा कि हमारी जंगों में या हमारे किताल फ़ी सबीलिल्लाह में लिल्लाहियत कब आएगी? जब हमारी नमाज़ों में लिल्लाहियत होगी, जब मुसलमान फजर की नमाज़ के लिए उठ के जाने के लिए तैयार हो जाएंगे ना वक्त पे, और वक्त से पहले निकलेंगे ताकि थोड़ा सा भी हिस्सा जो है वो नमाज़ का उनका ना छूटे, तो आप समझ लीजिए कि फिर वो उस वक्त तैयार हैं कि किसी वक्त भी उनको दुश्मन से लड़ने के लिए निकलना पड़े तो वो निकलेंगे। जब हमारी मईशत में लिल्लाहियत आएगी, जब हमारे तर्ज़ मुआशरत में लिल्लाहियत आएगी, जब हकीकी मानों में हम एक चलते फिरते मुसलमान बनेंगे ना, फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो तब्दीलियाँ आएंगी जो कि इस वक्त नहीं होती। तो इस्लाम दो हालात में जंग की इजाज़त देता है। नंबर एक, आपको पहले मैं आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ, फिर इसकी जो एक ख़ास टर्मिनोलॉजी है वो भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहली सूरत क्या है कि दुश्मन आ गया है, यानी दुश्मन ने हमला कर दिया है आपके ऊपर और अब आप अपना बचाव करना चाहते हैं। ऐसी जंग को डिफेंसिव वॉर कहते हैं, दिफाई जंग। दिफा किसको कहते हैं? प्रोटेक्ट करना अपने आप को। पहली हालत क्या है? मिसाल है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, किसी भी दुश्मन मुल्क ने उस पर हमला कर दिया, अब आपकी हालत जो है वो कौन सी होगी? दिफा वाली। अक़ल मानती है इसको कि दुश्मन हमला कर दे तो अपना बचाव करना चाहिए? अक़ल क्या, फितरत भी मानती है, छोटा बच्चा भी इसको लेके चलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर मक्का में कोई जंग ना हुई, मदीना में आने के बाद सबसे पहली जंग गज़वे बदर थी, दूसरी गज़वे उहद थी, फिर उसके बाद गज़वे बनू नज़ीर हुई, होते होते गज़वे खंदक जिसको गज़वे अहज़ाब भी कहते हैं। ये सारी जंगें जो थी ना, ये डिफेंसिव वॉर थी। दुश्मनों ने पहल की, मुसलमानों पे हमला किया और अल्लाह के नबी ने जाके मुकाबला किया, और अगर उस वक्त आप मुकाबला ना करते तो आज दुनिया में इस्लाम का नाम भी ना होता। इसके बाद गज़वे खंदक के बाद हालात कुछ इस किस्म के बन गए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब हम भी आएंगे। क्यों? कि पहले तुम आ गए थे, हमने बचाव किया, लेकिन अब दूसरी वॉर, इसको कहते हैं ऑफेंसिव वॉर, इकदामी जंग। डिफेंसिव थी कि दुश्मन आ गया है, और ऑफेंसिव वॉर क्या होती है कि दुश्मन आने वाला है, वो प्लानिंग कर रहा है, वो हालात ऐसे पैदा कर रहा है कि मुसलमानों को बिलाखिर ख़त्म करेगा। तो वो जो बैठ के कानों में बातें कर रहे हैं कि आओ ज़रा बैठो मुसलमानों को मारते हैं, आओ ज़रा तुम हमारी मदद करो, तो मुसलमान क्यों इतना कमज़ोर हो के हम भी आते हैं, चलो भाई हम भी मिलके चलते हैं और हम भी ऐसे दुश्मनों के आगे जाके खड़े हो जाते हैं जिन्होंने हमारे लिए कत्लो गारत करी के मंसूबे बनाए हैं। इसकी बहुत ही मरूफ मिसाल इंशाल्लाह आप जाके सूरह तौबा में पढ़ेंगे, सूरह अनफाल तौबा में, इवन सूरह अल बकरा में भी उसका थोड़ा सा हिस्सा आएगा, इशारतन सिर्फ गज़वे तबूक की सूरत में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में थे, मक्का आज भी आप देखिए कहाँ है, और दुश्मन कहाँ था? तबूक के मुकाम से भी आगे रूम, यानी आज भी जहाज़ में भी अगर आप जाएँ तो कई घंटे का सफ़र है। अल्लाह के नबी सल्लम को ये ख़बर मिली कि वहाँ का बादशाह है हिरकल, जो उस वक़्त की क्रिश्चियन सुपर पावर्स थी वो, कि ये मुसलमानों के ऊपर हमले की तैयारियाँ कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को जैसे आजकल अखबारों में आप पढ़ते हैं ना, धमकियाँ मिल रही हैं मुसलमानों को मारो, ये करो वो करो, फ़ला मुल्क आंखें नहीं खोल सकता, ये वो, इस तरह की सिर्फ आपको बातें मिली कि हमारे खिलाफ़ वहाँ तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। एक सूरत क्या थी कि आप कांपने लगते, थर 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 थर। फिर दूसरी ये थी माफ़ियाँ मांगते, प्लीज़ माफ़ कर दो। तीसरी ये थी एड दे दो हमें, अपने F-16 दे दो, दिस एंड दैट। और चौथी ये थी कि फिर गिव अप कर दो, नहीं 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 हमारे और तुम्हारे बीच में कोई फ़र्क नहीं, तुम जो मर्ज़ी करो, हम तुम्हारी गैर मशरूत इताअत करने को तैयार हैं। आपने इनमें से कोई एक काम भी नहीं किया, क्योंकि ये सारे काम दूसरे को खुद ब खुद जुर्रत देने के होते हैं, और अगले बंदे को ये यकीन दिला दिया जाता है कि हमारे अंदर मुकाबले की ताकत नहीं। इसको आप साथ साथ लेके समझते जाएं कि बच्चे को, घर में तीन चार बच्चे होते हैं ना, एक बच्चा होता है उसने सबसे मार ही खानी है, वो चुप करके बैठा है और जो आता है उसको मार जाता है, वो रोता है, माँ के पास आता है, फिर माँ चुप कराती है, थोड़ी देर नहीं होती फिर हीरिंग शुरू हो गई, वो क्या हुआ किसी ने उसकी चीज़ ले ली, वो सिर्फ रोता ही रहता है क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर सकता। और एक दूसरा बच्चा होता है जो सबको मार के आ जाता है, जब वो किसी को मार के आए और आके माँ के पास ही गए ना कि मैं मार के आ गया हूँ, तो वो एक और फितने की बात होती है। तीसरी किस्म के बच्चे बहुत बैलेंस्ड होते हैं, मारते भी हैं तो मार भी खाते हैं, खुद ही अपने मामले सेट कर लेते हैं, माओं को ज़्यादा तंग नहीं करते कि भाई हमारे आके जंग तुम सुलह करवाओ। इस्लाम क्या चाहता है कि मुसलमान बैलेंस्ड हो, जब कोई उस पर हमला करे तो फिर मुकाबला करने के लिए भी तैयार हो, और जब कोई उस पर हमला नहीं कर रहा है ऐसी धमकियाँ ही दे रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है ना, कुछ शौहर है वो उठते बैठते तलाक की धमकियाँ दे रहे होते हैं, कुछ बीवियाँ उठते बैठते धमकियाँ दे रही होती है मैके चले जाएंगे। ये धमकियाँ देने वालों को भी खुल के बता देना चाहिए कि आओ भाई करो क्या करना है, निकालो कौन से तीर हैं तुम्हारे पास, चला लो। अल्लाह के नबी सल्लम ने मुसलमानों को एक ऐसा नज़रिया दिया। लिहाजा आज के दौर में ना तो लफ्ज़ जिहाद या किताल सुन के आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, और ना उठ उठ के पाँव उठा उठा के बताना चाहिए कि हम जिहाद करेंगे, लड़ेंगे करेंगे। ये एक बिल्कुल आखिरी चीज़ होती है, हम पीछे अभी तक देख चुके हैं कि जब तक खुद मुसलमान इस्लाम के बुनियादी असूलों पे अमल नहीं करते, अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नतों को नहीं मानते, उस वक्त तक वो दुनिया के किसी मैदान में कामयाब नहीं होंगे। क्यों मुसलमानों को मदद की ज़रूरत पड़ती है इस वक्त, क्यों हर वक्त इनको एड की ज़रूरत है, क्यों इनके पास वेपन्स नहीं है? कभी आप सोचा तो सही, जितनी जूतियाँ बनती हैं हमारे मुल्कों में इतनी गोलियाँ क्यों नहीं बना लेते हम लोग, मुश्किल क्या है, वजह क्या है? सोचे जितना कपड़ा, जितनी डिज़ाइनिंग, जितना सलमा दबका बनता है हमारे मुल्कों में, इतने में हम बुलेट क्यों नहीं बना लेते? पीछे से बिके हुए हैं क्या? लोहा हमारे पास नहीं है, फौलाद नहीं है, इतनी जो मशीनें लगाते हैं बैठ के, सारे असले की मशीनें लगा लें, क्यों नहीं लगा पाते? ये सब आज मिनोपलीज हैं। मदीना में भी यही हालात थे, मुसलमान हथियार ख़ुद नहीं बना सकते थे, उनको दूसरों से लेने पड़ते थे। इसी तरह से आज की ये कहानी है। तो इस वक्त किताल बिल्कुल आखिर में, सबसे पहले जो मुझे आपको हम सबको करना है वो क्या है, इल्मी जिहाद करना है। आप बैठे डेडिकेट करें अपने आप को कि मैं कई कई घंटे भी बैठना पड़े तो बैठने को तैयार हूँ, इमरजेंसी हालात हैं, मैंने अपना बहुत वक्त ज़ाया कर दिया, मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा गुजर गई है और अभी मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, इसलिए आप मुझे जल्दी से पढ़ा दें, मैं ए टू ज़ी इस्लाम सीख लूँ, मैं इस कुरान की 114 सूरतें सीख लूँ, फिर मैं साथ साथ अहादीस की वो किताबें पढ़ लूँ जो मेरे अमल की हैं, ताकि मुझे पहले पता तो चले इस्लाम होता क्या है। आप देखिए कि आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या कौन हैं, ये इस्लाम कौन सा चीज़ है, तो आप दूसरों की मदद कैसे करेंगे? नतीजा क्या होगा कि आप हर जगह मार खा के आएंगे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पैगाम दे दिया कि वक़ातिलूहुम हत्तला तकूना फितनतुन, हाँ इनसे लड़ाई करते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे। यहाँ असल में डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों इन जंग इन आयतों में हमने देख ली कि शिर्क का भी खात्मा करो, परसिक्वेशन का भी खात्मा करो, और वयकून दीनुलिल्लाह, ये है अल्टीमेट गोल, जिसको आप कह सकते हैं ना कि इस्लाम का नज़रिया जिहाद क्या बताता है, वो क्या बताता है कि लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े करो, लोगों के ऑयल के ज़खीरों पर कब्ज़े करो, लोगों के बहरी बेड़ों पर कब्ज़े करो, हरगिज़ नहीं। अलामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है इस मामले में कि ना माले गनीमत न किश्वर कुशाई, माले गनीमत कहते हैं वार बूटी को, और किश्वर कुशाई कहते हैं अपने मुल्कों को ही बड़े करते जाना कि और भी जो दुनिया के हिस्से हैं वो भी सारे हमारे ही झंडे के नीचे आ जाए। ये दोनों चीज़ें नहीं, ना माले गनीमत न किश्वर कुशाई है क्या, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत। मोमिन दुनिया में भी शहीद हो के जीता है, कैसे? कलमाए शहादत की गवाही देते हुए, लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाते हुए दुनिया से गुजरता है, वो जहाँ से गुजर जाता है वो लोगों को हकीकत में इस्लाम का पैगाम दे के जाता है, और अगर इस रास्ते में उसकी जान भी चली जाए, इस रास्ते में अगर उसको अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़े, तो खुशी खुशी पेश करता है क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा रब जो है वो मेरे मामले में बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें तैयार करके रखा हुआ है। तो लिहाजा कभी भी इन चीज़ों को ना तो आप हर वक्त अपनी ज़ुबान पे रखें और ना इसके ऊपर रखें, और असल कोशिश कीजिए कि दीन अल्लाह का हो जाए, फिर इसके बाद फ़ैन इंतहाउ, फिर अगर वो बाज़ आ जाए, वो रुक जाए, वो नहीं करना चाहते लड़ाई, वो सुलह चाहते हैं, वो जंग नहीं चाहते, नो प्रॉब्लम, फ़लाहुद्वाना فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. دیکھو پھر زیادتی نہ کرنا ہاں مگر ظالموں پر. کیا پیغام ہے بار بار کہ نہتے بے گناہ شہریوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا. یہ جو ہم خبریں پڑھتے ہیں نا یہ آج کے دور کا تحفہ ہے. یہاں ایک اور چھوٹا سا اینگل سمجھ لیجئے کہ پہلے دور کی جو جنگیں تھیں نا اس میں چند لوگ گئے ہوتے تھے سرحدوں پہ لڑ رہے ہوتے تھے, ان کی جان کو خطرہ ہوتا تھا, وہی مرتے یا مرتے تھے. آج حالات کیا ہے کہ جو خود جرنیل اور کمانڈرز ہوتے ہیں نا وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں اور زلزلہ پروف بلڈنگز میں اور سیکیورٹیز کے اندر ہوتے ہیں. اندر سے ایک بٹن دبتا ہے, کلک کرتے ہیں اور نہتے گھر میں مسجدوں میں اسکولوں میں جابس پہ بیٹھے ہوئے لوگ وہ مر جاتے ہیں. اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. فلا عدوانہ, نہیں ہے زیادتی اللہ علی الظالمین, جو آتا ہے مارنے اس کو تو مارو, باقی کسی کو کیوں مارنا ہے. آج آپ دیکھ لیں بزدلوں کی جنگ ہے یہ, خود کبھی کوئی نہیں مرے گا, نخطوں کو ماریں گے. اور یہ تو اصل میں بہت ہی زیادہ کمزوری کی دلیل ہے نا کہ ہم گھر بیٹھ کے آپ کے اوپر گولیاں برسائیں گے, ہم پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا آپ پہ کرے گا. ایسی جنگ اسلام میں نہیں ہوا کرتی تھی اور یہ سراسر غیر اسلامی جنگ ہے. آج کے دور میں دیکھیں جہاں جہاں بھی حالات بگڑے ہوئے, کہیں کسی کے تیل کے کنوؤں پہ قبضے کی مت باتیں سنی جاتی ہیں, کہیں کچھ یا کہیں ملکوں کو لڑایا جاتا ہے. یعنی آج وہ اسلام کا نظریہ جہاد ہے ہی نہیں جو اصل میں تھا, پرواہ بھی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے لیے جب کسی کو بھیجتے تھے, جیسے حضرت اب علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا خیبر کی زمینوں کی طرف, اور خیبر ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور کے آپ کہہ لیں کہ سونا اگلتی ہوئی زمینیں, اتنی فرٹائل لینڈس تھیں. اور حقیقت ہے کہ خیبر کی زمینیں جب مسلمانوں کو ملی تو مسلمانوں کی بھوک ختم ہوئی, اتنی غربت تھی جو ختم ہو گئی. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جب بھیجا تو نصیحت کی, فرمایا کہ علی ان پر حملہ کرنے سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا. تمہاری دعوت سے اگر ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ تمہارے حق میں 100 سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہوگا. واپس آ جانا, کہا اگر وہ مان جاتے ہیں کہ مسلمان ہے تو پلٹ کے آ جاؤ, بالکل ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہوتے زمین کے بھوکے تو کہتے جاؤ کر چلے جاؤ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایڈوائز ہوتی تھی کہ کسی ملک میں جاؤ حملہ کرنے تو کبھی بھی رات کے وقت حملہ نہ کرو, انتظار کرو. ایک تو رات کو چھپے وار حملہ کرنا جو ہوتا ہے یہ بزدلوں کی علامت ہوتی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ بے گناہوں کے مارے جانے کا ڈر ہے. دوسرا ایک اور بھی وجہ ہوتی تھی اور وہ کیا تھی کہ آپ کہتے کہ انتظار کرنا, اگر وہاں فجر کی اذان کی آواز تمہیں آنے لگے تو پلٹ آؤ, سمجھ آؤ کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ٹیررزم سکھاتا ہے یا اسلام کے اندر اس قسم کی باتیں ہیں, یہ اصل میں ہمیں نہیں پتہ, اس لیے شرمسار ہوتے ہیں. اب اگلی آیت میں ایک خاص مفہوم ہے تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا, ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. آیت نمبر 194, الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص, ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ تو برابری کے ساتھ ہوگا. پھر اس کے باوجود فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, لہذا جو تم پر ہاتھ بڑھائے تو تم بھی اس پر ہاتھ بڑھاؤ یعنی حملہ کرو, البتہ اللہ سے ڈرتے رہو, یہ جان لو کیا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی حدود کو توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اس آیت کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لیجئے کہ شروع سے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ چیز دیکھتے آ رہے تھے, اور وہ کیا تھا کہ 4 مہینے, آپ لکھ لیجئے وہ 4 مہینے, آگے آگے کئی جگہ یہ آئیں گے, ذیقات, ذلحج, محرم اور رجب. ذیقات, ذلحج اور محرم یہ 3 مہینے حج کے مہینے بھی کہلاتے ہیں, اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ ذیقات میں عموماً لوگ حج کا احرام باندھ کے گھروں سے نکلتے تھے, پھر پیدل گھوڑوں پہ سفر ہوا کرتا تھا, تو ان 3 مہینوں میں کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. ان 4 مہینوں کو اسلامک ٹرمنالوجیز میں حرمت کے مہینے کہتے ہیں, میں دہراؤں گی, آپ فکر نہ کریں, جو چھٹ جائے اس کی پرواہ نہ کیا کریں, اگلا نہ چھٹ جائے اس سے, ٹھیک ہے. 4 مہینے حرمت والے ہیں شروع سے, سورہ توبہ کی آیت آتی ہے کہ جب سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس میں سے 4 حرمت والے ہیں، 4 میں سے 3 مہینے ذیقات، ذلحج اور محرم۔ اس کے بیچ میں ذلحج کا مہینہ آ گیا تو آپ کو فوراً یاد رہے گا کہ حج ہوتا ہے ان دنوں میں۔ ذیقات کے مہینے میں عموماً لوگ احرام باندھ کے گھروں سے نکلتے تھے، سواریوں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، پورے عرب سے لوگ آیا کرتے تھے مکہ میں۔ اب ظاہر ٹریولنگ کے دوران وہ کبھی راتوں کو گزرتے کسی جگہ سے، کبھی صحرا ہوتے، کبھی جنگل ہوتے۔ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کہ کوئی سفر کر ہی نہیں سکتا تھا، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے عرب لوگ، ڈکیتی، کڈنیپنگ، اغوا، برائے تاوان، یہ ساری اس دور کی کہانیاں تھیں۔ اب یہ 3 مہینوں میں وہ سب گینگز اور بڑے بڑے جو ڈکیتی کرنے والے گروپس تھے وہ کہتے تھے نہیں بھائی نہیں، حرمت کے مہینے آ گئے، اب کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اتنا احترام کرتے تھے ان 3 مہینوں کا کہ حتیٰ کہ حرم کی حد میں ان کو اپنے باپ کا قاتل بھی مل جاتا تھا تو اس کو نہیں مارتے تھے۔ اور اس کے برعکس باقی 8 مہینے جو ان 4 کے بعد رہ جاتے ہیں، کیونکہ چوتھا مہینہ جو رجب ہے نا، اس کی حرمت کیوں تھی؟ کیونکہ اس میں عموماً لوگ عمرے کے لیے نکلا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ذیقات، ذلحج اور محرم سارے ساتھ مل کے بولے، شابہ، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اسی کا یہاں تذکرہ شہر الحرام و بشہر الحرام، کہ حرمت کے مہینے کا بدلہ تو حرمت ہی کے مہینے میں ہے۔ ان مہینوں میں کوئی کسی کو ستائے گا نہیں، جنگ نہیں کرے گا، قتل و غارت گری نہیں ہوگی، لوگ بڑے امن سے آئیں گے خانہ کعبہ کی طرف، وہاں حج عمرہ کریں گے، پھر اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں گے۔ حالات اتنے خراب تھے مکہ کے یا عرب کے کہ ان 4 مہینوں کے علاوہ 8 مہینے ان کی تجارت بالکل ٹھپ رہتی تھی، ہڑتالیں بند، نو کام۔ کیوں؟ کہ قافلے والوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم نکلے ہیں مدینہ سے اور جا رہے ہیں مکہ تو ہم امن سے پہنچ جائیں گے، راستے میں لوٹ جائیں گے۔ اس لیے آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پڑھیں تو دنیا میں آپ کے آنے سے پہلے اتنا انتشار تھا کہ پورے سال میں صرف 4 مہینے تجارت ہوتی تھی، اور وہ یہ 4 ماہ تھے۔ سب کو پتا تھا کہ سیکیورٹی لگی ہوئی ہے، پولیس ہے، یہ آج کی زبان میں، یعنی آج کل ہم انشورڈ ہیں، فٹافٹ جاؤ اپنا سامان ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر لے آؤ، تاکہ پھر 8 مہینے گھر بیٹھ کے کھائیں گے۔ یہ آیتیں پڑھتی ہوں جب تو میں کبھی کبھی اپنے ملکوں کے حالات پہ غور کرتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج پھر انسانیت پھر اس جاہلیت پہ آ گئی۔ ایک دن ہڑتال ہے، دوسرے دن ایجیٹیشن ہے، کچھ دن دکانیں کھلتی ہیں پھر گولی چل جاتی ہے، پھر دکانیں بند، پھر یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، اب عید کی چھٹیاں آ گئی، اب محرم کی چھٹیاں آ گئیں، آج پھر انسانیت اسی تکلیف دہ حالات سے دوچار ہے جو اس دور میں تھی۔ بہرحال اب ہوتا کیا تھا کہ جب یہ 4 مہینے گزر جاتے تو دوبارہ وہ لوگ یہ کام کر لیتے۔ اب ہوا کیا کہ مکہ والوں نے مسلمانوں کو انہی مہینوں میں کچھ گڑبڑ کرنے کے لیے کی کوشش کی۔ اب ذرا سمجھ لیجئے تھوڑی سی بات، کیونکہ مشکل سبق ہے لیکن ایک دفعہ سمجھ جائیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ ذیقات، ذلحج اور محرم، مسلسل 3 مہینے گزرے نا۔ اب جن لوگوں کو لڑنے کی عادت تھی، نمبر ایک، دوسری بات ہے قتل و غارت کی عادت تھی، ان کے ہاتھوں کو کھجلی ہوتی تھی، ہائے 3 ماہ ہو گئے ہم نے لڑے ہی نہیں، ہائے 2 مہینے سے زیادہ گزر گئے ابھی تک ہم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اس قسم کی کہانیاں جو تھیں نا، انہوں نے پھر اس سے بچنے کا ایک من گھڑت طریقہ دیا۔ اور آپ یہ جو پورا میرا لیسن چل رہا ہے نا، اس کا اگر آپ مین ٹاپک رکھ رہے ہیں نا، رکھ لیں کہ عربوں کی بدعات، یہ ساری ہم بدعات ہی پڑھ رہے ہیں، سچے دین میں انہوں نے کیا نت نئے قسم کے اضافے کر لیے تھے۔ اب وہ کرتے کیا تھے سمجھیے گا، ترتیب تو کیا، ذیقات، ذلحج اور محرم، تو لڑنا تو ان کو ہے، تو لڑنے سے بچنے کے لیے کیا کہتے تھے کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ اس مہینے ذیقات کا مہینہ جو ہے آیا اور اس کے بعد ذلحج نہیں آیا، ذلحج کو ہم کہیں دور لے جائیں گے اور بیچ میں کوئی ایک مہینہ غیر حرمت والا ڈالیں گے تاکہ لڑ بھیڑ لیں اور پھر اگلے مہینے پہ جا کے، یعنی آپ اپنی زبان میں یوں سمجھے کہ جنوری، فیبروری اور مارچ ہمیشہ مسلسل آتے ہیں نا، کوئی اپنی عقل کے لیے استعمال کرتا ہے کہ نہیں اس دفعہ فیبروری کا مہینہ جون میں آ جائے گا اور جون کو ہم فیبروری میں کہہ لیتے ہیں۔ اب ان کے کہنے سے کیا ہوگا، है तो वही है ना। आप अपने सामने जून फरवरी के महीने में जून का कैलेंडर खोल के बैठ जाएं, ये आपकी अकलमंदी है या आपकी बेवकूफ़ी है। इस रस्म को नसी कहते थे, नसी। इसकी भी डिटेल्स हम पढ़ेंगे सूरह तौबा में, इन्नमा नसीउ ज़ियादतुम फिल कुफ्र। अल्लाह ताला कहते हैं ये नसी की बिदत या रस्म जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जब इनका दिल चाहता है ना किसी कबीले से लड़ना है, कोई इंतकाम लेना है, कोई जंग लेनी है, तो जाते हमला कर देते। लोग कहते भाई तुम्हें नहीं पता ये हुरमत का महीना है, कहते नहीं, इस साल ये हुरमत का महीना जाके जून में आएगा, अब तो हम लड़ लें। ये कैफियत थी, इसी किस्म की इनकी चीज़ें थी। एक और भी इनकी बहुत ही बड़ी मुश्किल थी, और वो क्या थी कि हज का महीना जो था ना, दरअसल मक्का वालों के लिए ऐसे ही था जैसे मेला था। मईशत उनकी खूब इसमें चमकती थी, पूरे अरब से लोग आते थे और मक्का वालों की खूब तिजारत होती थी, और ये चाहते थे कि हज हमेशा सर्दियों में आए। जब कभी हज का महीना गर्मियों में आता था ना, तो लोग कम हो जाते थे हज के ऊपर, तो इनकी तिजारत कम होती, आप कह लें कि इनका बिज़नेस डाउन होने लगता था। इसके लिए भी इन्होंने एक रस्म क्या की थी, हर 3 माह के बाद, सोचिएगा, हर 3 महीने के बाद एक महीना बढ़ा लेते थे। आप थोड़ा सा और पीछे जाएं, आपको पता है कि शमसी कैलेंडर और कमरी कैलेंडर में अमूमन 1 साल में 10 दिन का फ़र्क पड़ जाता है, पता है आपको ये बात। हर साल रोज़े आपकी 10 दिन पीछे आते हैं ना, तो वो 10 10 दिन को जब आप 3 महीने 3 साल पे ले जाएंगे तो 1 महीने का फ़र्क पड़ जाता है ना। जो आदत थी उनकी क्या थी कि हर साल में वो 1 महीना एक्स्ट्रा कर देते थे, क्यों, ताकि हर साल हज जो है वो दिसंबर में ही आए, समझ रहे। हर 3 माह के बाद वो 1 महीना बढ़ाते, ताकि वो 10 10 दिन का जो कमरी और शमसी का फ़र्क होता वो वापस पलट के फिर ऐसे ही हर साल 1 दिसंबर को हज होगा। ऐसा क्यों करते थे, ताकि हर दफ़ा हज हम दिसंबर में ही करें, खूब मेला हो, लोग आए, गुड वेदर, फंक्शन फेस्टिवल भी मनाएंगे। और हज तो बस आ गया, पढ़ेंगे इनकी कहानियाँ कि हज तो इन्होंने वाकई कुछ इस किस्म की चीज़ बना ली थी जैसे कोई फनप्लेक्स है। और अफसोस की बात है कि आज भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया हम लोगों में, लेकिन बहरहाल इस तरीके से ये अपनी मर्ज़ी से अल्लाह के महीनों को कम बेश करते, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को के जहनों में उठने वाले एक सवाल का जवाब दिया। क्योंकि अब सवाल उठता था ना कि अगर हुरमत के महीने में ये काफिर हम पे कोई हमला कर दें, हमें रोक ले, और ऐसा हुआ था हुदैबिया के मुकाम पे ज़ीकात के महीने में अल्लाह के नबी सल्लम जा रहे थे, और इन्होंने ऐन मक्का से चंद मील के फासले पे हुदैबिया के मुकाम पे रोक दिया। नहीं 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 बिल्कुल नहीं जा सकते भाई, हम तो उमरा करने आए। नहीं नहीं तुम हम पे हमला करने आए हो, बताओ भाई कहाँ है हमारे पास हथियार। नहीं कुछ भी नहीं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक बात हुई थी, वो आगे जहाँ आएगी तो आपको पूरी डिटेल से सुनाऊंगी। आजकल मैं अपनी एक और क्लास में वीकेंड पे फतेह मुबीन के नाम पे वो पढ़ा रही हूँ, कल पढ़ाई है अभी मैंने, और यकीन करें कि जिस्म का एक एक अंग बंदे का खुश हो जाता है अल्लाह के नबी सल्लम की स्ट्रेटजीज़ को पढ़ के। आप कह सकते हैं कि अगर सुलह हुदैबिया ना होती तो मक्का भी फतह ना होता। हम तो पता नहीं कहाँ बैठे हुए ज़िंदगी बसर करके आ गए, हम तो सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ लें, नॉर्वे की पढ़ लें, अमेरिका की पढ़ लें, आती समझ कुछ भी नहीं, सिर्फ टेस्ट देने के लिए पढ़ के आ जाते हैं। अगर आप अपनी आंखें खोलना चाहते हैं ना तो सीरत पढ़ें, सारे आंखों पे पड़े हुए पर्दे खुल जाएंगे, सब बाप दादा की तकलीद के फंदे और रस्म और रिवाज और अकीदतों की बातें ख़त्म होंगी। और यही वो चीज़ें जो लोग नहीं पढ़ने देते, इवन जो लोग सुबह शाम मीठी सुन्नतें और पता नहीं क्या क्या मीठे नबी की बातें करते हैं, मैंने नहीं उनकी ज़ुबान से सुना कि आए बैठे शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ें। सुनाएँगे भी तो जुल्फ़ों की बातें, किससे हलवा खाते थे, ये पीते थे, जंगे लड़ते थे, शादियाँ करते थे, कोई अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को एकदम खोल के देखे। इस पे एक बुक भी ऑनलाइन अगर आप देखना चाहें रहबरे कामिल के नाम पे, मैं अपनी एक ऑनलाइन क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ चलते फिरते सुननी शुरू कर दें। 19 डिफरेंट एंगल्स हैं उसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी पाक बहसियत वालिद, बहसियत बेटा, बाप, फिर एक जर्नेल, एक कमांडर, एक मैनेजर, यानी क्या क्या आपकी शख्सियत ही। बहुत ही प्यारी किताब है, गालिबन सोहर वर्दी कुछ इस तरह के राइटर हैं मंजूर, आप ख़ुद पढ़ना भी चाहें तो पढ़ लें, लेकिन मैंने पढ़ाई भी है तो सुनना चाहें तो आप वहाँ से सुन सकते हैं वेबसाइट पे, कि वाकई पता चलता है कि अल्लाह के नबी एक कामयाब इंसान थे, वाकई एक वो नबी थे। हम उनको आज हीरो तो बनाते हैं लेकिन हम उनको प्रॉफिट नहीं बनाते। हीरो वर्शिप के तौर पे कोई बात करे तो हम उससे लड़ने लग जाते हैं, खुद हमें नहीं पता होता कि कोई पूछे कि बताएं हुदैबिया के मौके पे अल्लाह के नबी की क्या स्ट्रेटजी थी, तो हम बगले झाड़ने लगते हैं ये क्या होता है और होती है। उस मौके के बारे में अल्लाह ने कहा कि अब तुम्हें इन्होंने रोका, अब तुम क्या करो। सवाल पैदा हुआ था कि अल्लाह के नबी है महीना हुरमत वाला, काफिरों ने हम पे हाथ बढ़ा दिया, अब क्या करें। तो कहा जाओ तुम भी पकड़ो फिर, क्योंकि वल हुरमात तो क़िसास, हुरमतें तो बराबरी की होती हैं, जैसी इज्जत उनकी है वैसी इज्जत तुम्हारी है। आज हमारे यहाँ कहते हैं लड़की का बाप हमेशा नीचे बैठेगा और लड़के की माँ हमेशा तख्त पे बैठेगी। तुम लड़की वाले हो तुम नीचे बैठो, लड़के वाले आए हो बारात में आगे बैठो। सिर्फ इतने से लफ्ज़ वल हुरुमात व क़िसास को इन जंगी तनाजर से अलग करके देखे ना, आपको माशरती ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत असूल मिलता है कि जो इज्जत करे उसकी इज्जत करो। कोई सिर्फ इसलिए जलील नहीं है कि वो बेटी का बाप है, और कोई इसलिए बहुत चढ़ नहीं गया कि उसने बेटे को पैदा कर लिया। हमारे यहाँ दामाद और सुसास का ताल्लुक देख लीजिए, बहू और सास और सास और बहू का देखिए, वल हुरुमात व क़िसास, ये इस्लाम सिखाता है। इज्जत की बातें हैं, जो प्यार करे तुम भी प्यार करो, जो मोहब्बत करे तुम भी करो, जो तुम्हारे साथ ज्यादती करता है तो कम से कम ज्यादती ना करो, उससे बड़ो ना। लेकिन फमन्नत अदा अलैकुम फातदू अलैह, जो तुम पे ज्यादती जो करता है, तुम्हारी सास तुम पे ज्यादती कर रही है तो क्या करो, सब्र के गुण बढ़ते रहो, रोते रहो और उसको मौका देते रहो कि करती रहे ज्यादती और जहन्नुम में जाए आखिर में, और तुम सब्र से जन्नत में चले जाओ। इस्लाम ये नहीं मानता। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि बहुएं ज्यादती करने लग जाए, मैं सिर्फ आपको बात का एक सिनेरियो समझा रही हूँ कि हमें इस्लाम ने जीने का हक दिया, हमारे इस्लाम ने हमारी जो हिफाजत की है ना, हमारी अक़ल की हिफाजत की है, बंदे को अकली तो इसीलिए ग़ुलामी इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। इस्लाम ने हमारी इज़्ज़त की हिफाजत की है, इस्लाम ने हमारी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत की है। आप जब किसी के जुल्म को बर्दाश्त करते हैं ना, तो असल में आप दूसरे शख्स को जुल्म करने का मज़ीद मौका दे रहे हैं। फी ज़माना आप कह रहे हैं, हम ये कह रहे होते हैं कि हाँ भाई कर लो जितना जुल्म करना है, मैं तो सब्र ही करूँगी, मैं तो जन्नत में जाऊँगी। ठीक है मान लिया चले गए, तो उसका क्या बना। हदीस नबी सल्लम ने फरमाया कि जालिम और मज़लूम की मदद करो। सहाबा किराम बड़े हैरान हुए, कहा अल्लाह के नबी मज़लूम की मदद करना तो समझ में आ रहा है कि उसको जुल्म से रोके, तो मज़लूम जालिम की मदद कैसे करें। कहा उसको जुल्म से रोके। तो लिहाजा वल हुरुमात क़िसास, इज़्ज़तें बराबर की है, वो मुसलमान की और काफिर की इज़्ज़त बराबर है। अगर एक वेस्टर्न शख्स है और एक ईस्टर्न शख्स है, दोनों की इज़्ज़त बराबर है। ये तो नहीं कि उनका एक क्लर्क भी मारा जाए तो उसके ऊपर तुम हंगामा कर दो, और मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा भी मारे जाएं तो उसको ना कर दो। आज दुनिया में दर हकीकत बिल्कुल अप्स एंड डाउन हुआ हुआ है, इसीलिए हम परेशान हैं। हाँ फमन्नेतदा अलैकुम, जो तुम पे ज्यादती करे तो फातदू अलैहि बिमिस्ली मा तदा। असल मसला यह है तुम भी बराबरी का बदला कर लो, लेकिन ज्यादती नहीं करनी। हमारा ख्याल है कि जब हम सास के जुल्म के मुकाबले में कुछ करते हैं तो फिर हम ज्यादती कर लेते हैं, या उससे नहीं ले सकते तो अपनी आने वाली बहू से बदला लेते हैं कि मेरी सास मरहूमा अल्लाह उसको बख्शे उसने बड़ा जुल्म किया था, मैं भी तुम पे करूँगी तभी मेरा दिल ठंडा होगा। नहीं, फिर भी मैं इसलिए माता यहाँ रुक जाओ, ये बहुत मुश्किल है। यदि अगर किसी की उंगली काटी ना, किसी ने यहाँ तक काटी का तुम भी काट लो, लेकिन बस इतनी काटना जितनी उसने काटी है। अगर तुमने यहाँ तक काटी तो तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। आज पूरे सबक में आप देखेंगे आपको जो एक तोहफा मिल रहा है ना, वो तकवा का मिल रहा है। और आप एग्जाम में बिर पढ़ रहे हैं ना, लैसल बिर्रा से बात शुरू हुई है, रोज़े का तस्करा था, लअल्लकुम तत्तकून, क्यों रोज़े हैं, ताकि तकवा अख्तियार करो। यहाँ आज जंगों की हुरमतों की बात हो रही है, वत्तकुल्ला, अगली आयतों में आप पढ़ेंगे हज की बात आएगी, वत्तकुल्ला। आप तकवा को समझ ही लें आज, फिर अगली आयतों में आसान होगा। आप देखिए कि करेंसी होती है ना, आपके इस मुल्क में क्रोन चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, पाकिस्तान में रुपीस चलते हैं। हम दुनिया में कहीं भी ट्रैवलिंग पे निकलते हैं, हज पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम अपने साथ मनी लेके जाते हैं ना। होता क्या है कि आप जहाँ जाते हैं अपनी इस मनी को कन्वर्ट कर लेते हैं उस मुल्क की मनी में और चीज़ें ख़रीद सकते हैं। बस आप ये समझ लें कि तकवा मोमिन की करेंसी है। हर वक्त वो अपनी जेब में लेके तकवा की गठियाँ फिरता है, गड्डियों की गड्डियाँ रखी हुई हैं। ये तकवा ही बदलता है मुख्तलिफ रूप में।